Iran Radio Podcast.
दोस्तों, जितना पुराना इतिहास इंसान का है, उतना ही पुराना युद्ध और शांति का भी है। जब से इंसान है, युद्ध और शांति भी तभी से है। दुनिया में अलग अलग वजहों से जंगें लड़ी जाती रही हैं। धर्म के नाम पर लड़ी जाने वाली जंगों का एक सिलसिला था, जिसे हम क्रूसेड्स के नाम से जानते हैं। क्रूसेड पॉडकास्ट का ये 15वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूँ सैयद मीसम अब्बास। अगर आप दूसरे दिलचस्प विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर विजिट कर सकते हैं। फ्रांस के राजा लुई 3 साल से क्रूसेड की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने युद्ध के लिए पैसे जुटाने के लिए लोगों पर भारी टैक्स लगा दिया। अगस्त 1248 में लुई की सेना साइप्रस के लिए निकली और फिर मिस्र पहुंच गई। जब वो दमियता पहुंचे तो क्रूसेडर सेना की संख्या 50,000 थी। क्रूसेडरों के दमियता पहुंचने से कुछ समय पहले मिस्र के शासक सुल्तान अल साले अय्यूब होम्स शहर की घेराबंदी में लगे हुए थे। वो अय्यूबी परिवार के एक और सदस्य से उसे वापस लेने का प्रयास कर रहे थे। जब उन्होंने क्रूसेडर सेना की हरकत के बारे में सुना तो उन्होंने घेराबंदी छोड़ दी और तेजी से मिस्र की ओर बढ़े। क्रूसेडरों को अपने जहाजों से उतरते समय मुसलमानों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वो आखिरकार दमियता शहर को घेरने में कामयाब रहे। घेराबंदी से पहले शहर के लोग डर के मारे शहर छोड़कर चले गए, क्योंकि उनके दिमाग में 5वें क्रूसेड की यादें ताज़ा थीं। इस वजह से दमियता शहर आसानी से और बिना किसी खास प्रतिरोध के क्रूसेडर्स के हाथों में चला गया। अय्यूबी राजा अल साहले ने शहर की हिफाजत के लिए जिम्मेदार लोगों को मौत की सजा दी और उनके धोखे की भरपाई करने की कोशिश की। जब वो बहुत बीमार था तब भी उसने दमियता को यरूशलम से नहीं बदला था। इसलिए लुई, जिसने सोचा था कि इस शहर पर कब्जा करके वो आसानी से इसे यरूशलम से बदल सकता है, पूरी तरह से निराश हो गया। 5वें क्रूसेड की यादों को ताज़ा करते हुए, जब क्रूसेडर्स गर्मियों में नील नदी की दलदल में फंस गए थे और हार गए थे, लुई ने गर्मियों में दमियता में रहने का फैसला किया। मिस्र के सैनिक मंसूरा शहर की ओर बढ़े। उन्होंने दमियता पर नज़र रखी और शहर के आसपास धावा बोलकर शहर के दरवानों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। नील नदी का पानी कम होने पर लुई की सेना काहिरा पर कब्जा करने के लिए दक्षिण की ओर बढ़ी। उनके कुछ बुजुर्गों का मानना था कि अगर वो अलेक्जेंड्रिया पर हमला करते हैं तो उन्हें बेहतर और अच्छा नतीजा हासिल होगा, लेकिन लुई ने ये बात नहीं मानी। लुई की सेना काहिरा की तरफ बढ़ रही थी, तभी अल साले अय्यूब की मौत हो गई। क्रूसेडर्स को अगर ये खबर मिलती तो उन्हें उम्मीद हो जाती कि काहिरा पर जल्दी कब्जा हो सकता है, लेकिन ये खबर उन तक नहीं पहुंची, क्योंकि अल साले अय्यूब की पत्नी शजर ने, जो बहुत दूर की सोचने वाली औरत थी, अपने मंत्रियों के साथ मिलकर राजा की मौत की खबर सार्वजनिक नहीं होने दी। उसने कुछ समय के लिए देश और सेना को संभाला और हालात को सामान्य किया। सुल्तान का बेटा तुरान, जो एक आइलैंड पर था, अपने पिता की सत्ता संभालने के लिए मिस्र पहुंचा और उसने सरदार फखरुद्दीन को क्रूसेडर्स के खिलाफ सेना की कमान संभालने के लिए चुना। क्रूसेडरों ने मेडिटेरियन सी के इलाके में पड़ाव डाल दिया। क्योंकि वो पानी से घिरे हुए थे, इसलिए दोनों सेनाएं 6 हफ्तों तक बिना लड़े एक दूसरे का सामना करती रहीं। आखिर में मिस्र की सेना के कमांडर की क्रूसेडर्स सेना के हमले में मौत हो गई। फखरुद्दीन के बाद मिस्र की सेना की कमान बेबर्स नाम के एक ममलूक को सौंपी गई। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि वो एक बहुत काबिल इंसान था, इसलिए मुसलमानों को उम्मीद थी कि वो मिस्र को पतन से बचा लेगा। क्रूसेडर मंसूरा शहर पहुंचे और 8 हफ्तों तक वहां पड़ाव डाल दिया। तुरान शाह इस शहर में पहुंचा और मिस्र की सेना को मजबूत किया। उसने ऊंटों के जरिए कई नावों को नील नदी तक ले जाने का आदेश दिया। इन नावों की मदद से उसने दमियता शहर से जोड़ने वाली पानी की लाइन काट दी और मिस्र के लोग दर्जनों क्रूसेडर जहाजों पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। इस तरह क्रूसेडर सेना एक कड़ी घेराबंदी में फंस गई और कुछ समय बाद क्रूसेडर सेना में भयंकर अकाल और कई तरह की बीमारियां फैल गईं। लुई ने मार्च के आखिर में दमियता की ओर पीछे हटने का फैसला किया। जैसे ही क्रूसेडर पीछे हटने लगे, मिस्र के लोगों ने उनका पीछा किया और उन पर बहुत दबाव बनाया। भूख, थकान, जानलेवा बीमारियों और निराशा ने क्रूसेडर सेना को थका दिया था। इस समय लुई बहुत बीमार हो गए और बीमारी के बिस्तर पर पड़ गए और उन्होंने बिना किसी शर्त के शहर को सरेंडर करने का फैसला किया, जिसके बाद क्रूसेडर सेना के कमांडरों ने मिस्र की मुस्लिम सेना के सामने सरेंडर कर दिया। कैदियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि मिस्र के लोग उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि लुई को भी मिस्र के लोगों ने पकड़ लिया था। लुई ने कि जो पकड़े गए थे और बीमार थे, कैद में मिस्र के लोगों के साथ शांति समझौता साइन करने का फैसला किया। वो अपनी आज़ादी, दमियता शहर और अपने सैनिकों की आज़ादी के बदले में एक बड़ी रकम देने के लिए तैयार हो गए और मिस्र के लोगों ने इस समझौते का स्वागत किया। फ्रांस के राजा लुई और मिस्र के राजा तुरान के बीच हुए एग्रीमेंट के कुछ समय बाद ममलूक कमांडरों ने तुरान शाह के खिलाफ तख्ता पलट कर दिया। कहा जाता है कि इस तख्ता पलट का मकसद ये था कि तुरान शाह ने मोसुल से अपने साथ लाए भरोसेमंद लोगों को अहम पदों पर नियुक्त किया था। इससे ताकतवर ममलूक परेशान हो गए। दूसरी ओर तुरान शाह की अपनी सौतेली माँ शजरा से अनबन ने ममलूक विद्रोह के लिए जमीन तैयार की। आखिरकार ममलूकों ने ऐबक लासमर नाम के एक व्यक्ति को कमांडर चुना और तुरान शाह को मार डाला। तुरान शाह के बाद ऐबक ने खुद को सुल्तान का नायब घोषित कर दिया और शजरा से शादी कर ली। कुछ समय के लिए उसने तुरान शाह के चचेरे भाई को राजा बना दिया। दमियता मिस्रियों को दे दिया गया और जो तय हुआ था उसके मुताबिक टैक्स इकट्ठा किया गया और अदा कर दिया गया, क्योंकि ये तय पाया था कि बाकी आधा टैक्स राजा लुई के एकर पहुंचने पर दिया जाएगा। लुई को रिहा कर दिया गया, लेकिन वो 4 साल तक यूरोप नहीं लौटे। वो यूरोप इसलिए नहीं गए क्योंकि वो अपने सभी सैनिकों को ममलूकों से आज़ाद कराना चाहते थे, लेकिन शायद फ्रांस वापस तुरंत न लौटने की असली वजह यह थी कि उन्हें फ्रांस और यूरोप के लोगों से शर्म आ रही थी। समय बीतने से उनकी निराशा और यूरोप के लोगों का गुस्सा कम हो सकता था और फ्रांस और यूरोप के लोगों के लिए उनकी मौजूदगी सहने लायक हो सकती थी। कुछ समय बाद मिस्र के ममलूकों और नासिर की कमान में सीरिया के अय्यूबियों के बीच दमिश्क में झड़पें शुरू हो गईं। इन झड़पों की वजह से दोनों पक्षों ने फिलिस्तीन के यूरोपियों को लुई की कमान में अपने साथ लाने की कोशिश की। नासिर ने लुई से यह भी वादा किया कि अगर फ्रांसीसी ममलूकों के खिलाफ उसकी मदद करेंगे तो वो उन्हें यरूशलम दे देगा, लेकिन लुई ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि उस स्थिति में मिस्र के लोग मिस्र में बचे हुए क्रूसेडर कैदियों को मार डालते। इसलिए लुई ने मिस्र के ममलूकों को अय्यूबियों के साथ मिल जाने की धमकी दी और उन्हें बिना टैक्स दिए क्रूसेडर कैदियों को रिहा करने को कहा। ममलूकों ने भी ये मांग स्वीकार कर ली। इस तरह लड़ाइयों का 7वां फेज भी मुसलमानों के हक में और क्रूसेडर्स के नुकसान में ख़त्म हुआ। मुसलमानों और ईसाई क्रूसेडर्स के बीच जो शांति समझौता हुआ उसने मुसलमानों की ताकत और क्रूसेडर्स की कमजोरी को दिखाया। हालांकि कुछ समय बाद मिस्र में हुए सियासी बदलावों ने मुसलमानों के लिए इस जीत की मिठास को कुछ कम कर दिया, क्योंकि तुर्क ममलूक अय्यूबियों की तुलना में मिस्र के लोगों के लिए पसंदीदा शासक नहीं थे। दूसरी ओर ममलूकों के आने से पश्चिमी इस्लामिक दुनिया, जो अल साहले अय्यूब के समय में कुछ हद तक एक थी, अंदरूनी झगड़ों में फंस गई। इन मतभेदों की वजह से दो मुस्लिम शासन, अय्यूबी और ममलूक, क्रूसेडर्स को अपने दुश्मनों के खिलाफ रियायतें देकर अपने साथ लाने की कोशिश करने लगे, जिससे इस्लामिक दुनिया की एकता को भी नुकसान पहुँचा। जैसा कि बताया गया है, ममलूकों ने अय्यूबियों के खिलाफ क्रूसेडरों से गठबंधन का वादा लेकर लुई के साथ हुए समझौते की आधी शर्तों को माफ कर दिया और सभी क्रूसेडरों को छोड़ दिया। दूसरी ओर इन युद्धों और लगातार अंदरूनी झगड़ों की वजह से ममलूकों और अय्यूबियों ने अपने कंट्रोल वाले शहरों और गांवों के लोगों से टैक्स की रकम बढ़ा दी। फिलिस्तीन में रहने के दौरान लुई ने क्रूसेडर शहरों की सुरक्षा मजबूत की, एंटियोक और त्रिपोली की रियासतों में पारिवारिक झगड़े सुलझाए और सीरिया में इस्माइलियों के लीडर के साथ दोस्ती की संधि की। उसने मुसलमानों के खिलाफ मंगोलों के साथ सहयोग की संधि करने की भी कोशिश की। ऐतिहासिक सबूतों के मुताबिक फिलिस्तीन में रहने का लुई का एक मकसद अपनी हार की भरपाई के लिए नए क्रूसेडर सैनिकों को ट्रेनिंग देना और काम पर रखना था। इस मकसद के लिए उसने फ्रांस में अपने भाइयों से मदद के लिए एक सेना भेजने को कहा। उसने पोप से भी मदद मांगी और पोप ने यूरोप के राजाओं को लिखा और उनसे लुई की मदद करने को कहा। लुई ने अपनी पूरी कोशिश की थी, इस बात से अनजान कि ये सारी कोशिशें बेकार थीं, क्योंकि ना तो यूरोप के राजाओं को और ना ही यूरोप के लोगों को अब क्रूसेड में कोई दिलचस्पी थी। पोप और चर्च से उनकी नाराजगी और पिछले युद्धों में मिली हार ने जिहाद के लिए किसी भी नए मोटिवेशन को ख़त्म कर दिया था। अगर क्रूसेडर्स और पोप और चर्च के लिए पिछली हारों के लिए कोई वजह थी, तो इस हार के लिए उनके पास कोई वजह नहीं थी। रंसीमन लिखते हैं, मुजाहिदीन की हार को उनकी अपनी बुराई और गुनाहों का नतीजा माना जा सकता था, लेकिन उनके पास इस नई हार के लिए कोई वजह नहीं थी। तो क्या ये सच नहीं था कि ईश्वर इस मोमेंट से पूरी तरह नाराज था?